रामायण। मैं काल हूँ। अग्नि परीक्षा के बाद श्री राम और सीता उसी तरह एक दूसरे के पास आसीन हुए जैसे श्री हरि विष्णु और देवी लक्ष्मी होती है। इस मनोहारी छवि को देखकर भूलोक में आए देवतागण अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने इस युगल पर फूल बरसाकर उनका अभिनंदन किया। तब श्री राम ने सबको इस विजय के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने इंद्र के साथी मातली को भी साधुवाद दिया और तब श्री राम की आज्ञा पाकर मातली उन्हें प्रणाम कर इंद्रलोक की ओर उड़ चले।
नारायण नारायण, प्रभु ये जोड़ी कितनी सुंदर लग रही है। इसको देखने के लिए तो देवतागण भी लालायित रहते हैं। आज सबकी इच्छा पूरी हुई। अत्याचारी रावण का अंत करके आपने एक महान कार्य किया है प्रभु। नारायण नारायण।
हाँ प्रभु, मैं इंद्रलोक की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपने देवताओं पर बड़ी दया की है। रावण पूरे विश्व के द्रोह में तत्पर था। आपने इस दुष्ट का अंत कर हमारा बहुत बड़ा कल्याण किया है प्रभु।
प्रभु श्री राम, आपकी महिमा का बखान कोई नहीं कर सकता। आप ही ब्रह्म, अविनाशी, नित्य शाश्वत, अखंड, निर्गुण और निर्विकार है। प्रभु आपने ही मत्स्य, कश्यप, वराह, नरसिंह, वामन और परशुराम का शरीर धारण किया है। जब जब देवताओं ने दुख पाया है तब तब आपने अनेक शरीर धारण कर उनके दुखों का नाश किया है।
प्रभु आपने लंकापति रावण को मारकर देवता, गंधर्व, ऋषि मुनि और सभी मनुष्यों को भय मुक्त कर दिया है। हे रघुकुल स्वामी श्री राम, अब आप मुझे आज्ञा दें कि मैं आपके लिए क्या करूं।
देवेंद्र, मेरे प्रिय वानर रीच, जिनका राक्षसों ने वध कर दिया है, युद्ध भूमि में पड़े हुए हैं। इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए। मैं चाहता हूं कि इन्हें अपने बलिदान का सुखद फल प्राप्त हो और इस विजय के क्षणों में ये भी सहभागी हो, इसलिए आप इन सभी को जीवित कर दें।
हे त्रैलोक्यनाथ, आप तो स्वयं सबके पालनहार हैं। आपने आदेश देकर मेरा सम्मान बढ़ा दिया है प्रभु। मैं अभी इसी क्षण युद्ध भूमि में पड़े सभी वानर और ऋषियों को जीवित करता हूं।
सुधा बरसे कभी भालु जियाए, हरसी उठे सब प्रभु पहियाए।
अरे ये क्या, मुझ पर तो राक्षस ने प्रहार किया था। मैं भयंकर पीड़ा से गिर गया। उसके बाद तो मुझे कुछ भी पता नहीं।
अरे मैं भी मूर्छित था, मुझे लगा कि मेरे प्राण ही उड़ गए।
तुम सबके प्राण पखेरु सच में उड़ गए थे
क्या?
हाँ ये सत्य है भाई, राक्षसों के प्रहार से हमारे बहुत सारे सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए थे, किंतु प्रभु श्री राम की कृपा से सब के सब जीवित हो उठे।
प्रभु आपके आदेश का पालन कर मैं धन्य हो गया। अब हमें आज्ञा दे दें। प्रणाम प्रभु।
नारायण नारायण, कैसा चमत्कार है प्रभु। इस शुभ अवसर के साक्षी सभी बनना चाहते हैं। उधर देखिए, शिवलोक से देवाधिदेव शिव भी पधार रहे हैं।
देवर्षि नारद, ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि साक्षात भोले शंकर दर्शन देने के लिए आ रहे हैं।
नारायण नारायण, लीजिए आ गए देवाधिदेव। महादेव को नारद का प्रणाम स्वीकार हो।
हम सभी का प्रणाम स्वीकार हो महादेव।
अच्छा, तो समस्त देवलोक पहले से ही यहाँ उपस्थित है।
देवादिदेव महेश, आप मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें।
प्रभु, मैं आपके इस योद्धा वेश को देखने के लिए लालायित था। बाल रूप का दर्शन तो पहले ही कर चुका हूँ, पर इस रूप को देखकर तो मैं धन्य हो गया।
हे शिव शंकर, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपने हम सभी को दर्शन देकर कृतार्थ किया।
बस प्रभु, एक ही प्रार्थना है कि आप सौमित्र लक्ष्मण और देवी सीता सहित मेरे हृदय में सदा निवास करें। अब मैं आपकी और लीला देखने के लिए अयोध्या नगरी अवश्य आऊंगा।
दशकांधार की मृत्यु से तीनों लोकों में प्रसन्नता छा गई। देवलोक से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। नारद सहित ब्रह्मा, महेश और इंद्र सहित सभी देवता प्रकट हुए और श्री राम को धन्यवाद करके अपने अपने लोक गए। जब सभी देवता अपने लोक चले गए तो विभीषण श्री राम के पास आए।
प्रभु, मैं आपका किन शब्दों में आभार प्रकट करूं? आपने मेरे बड़े भाई अत्याचारी लंकेश रावण के पापों का अंत कर केवल मेरा ही नहीं पूरी मानवता का कल्याण किया है। त्रिभुवन में आपका पवित्र यश शाश्वत रूप से फैल रहा है।
रक्षेंद्र विभीषण, जो कुछ भी हुआ उसमें विजय मेरी नहीं, मानवता और धर्म की विजय हुई है। इसमें सबकी भूमिका है। इस विजय का श्रेय आप सबको जाता है।
किंतु राघव, सब पर आपकी ही तो कृपा रही है। आपकी कृपा के बिना ही असंभव था। और प्रभु, अब जब ये युद्ध समाप्त हो गया है, एक विनती है आपसे।
निसंकोच कहें रक्षेंद्र, निसंकोच कहें।
हे प्रभु, इतने दिन के युद्ध में आप बहुत थक गए होंगे। अब आप राजमहल में चलकर स्नान करें और युद्ध की थकान मिटाएं। आपके चरण रज से मेरी कुटिया भी पवित्र हो जाएगी। प्रभु,
रक्षेंद्र, आपका प्रेम देखकर मैं अभिभूत हूं, किंतु भरत की दशा स्मरण करके मुझे एक एक पल करोड़ों कल्पों के समान लग रहा है। मन कहता है कि मैं शीघ्र अयोध्यापुरी पहुंचूं और अपने प्रियजनों से मिलूं। मुझे इस समय अयोध्या की बहुत याद आ रही है रक्षेंद्र।
मैं आपकी वेदना को समझ सकता हूं राघव, परंतु मैं तो लंका के महल में आपकी सेवा करके पूर्ण हो जाना चाहता था।
मैं आपकी संवेदना का सम्मान करता हूं रक्षेंद्र, किंतु हमें यहां से शीघ्र निकलना होगा। अयोध्या की दूरी अधिक है और वहां पहुंचने में भी बहुत दिन लगेंगे।
आप दूरी की चिंता ना करें प्रभु, हमारे पास पुष्पक विमान है जो वायु की गति से आपको अयोध्या तक पहुंचा देगा।
विभीषण, आपने हमें और हमारी सेना को कई बार संकट से मुक्ति दिलाई है, नहीं तो हमें आज ये विजय प्राप्त नहीं होती। आपका मैं आजीवन ऋणी रहूंगा।
नहीं प्रभु, नहीं, ऐसा ना कहें। ऋणी तो मैं आपका हूं। पता नहीं, मेरा मन आपको छोड़ने को नहीं कर रहा है। मेरी इच्छा है मैं भी आपके साथ अयोध्या चलूं और पूरा जीवन आपके चरणों में बिता दूं।
लंकापति, अयोध्या के राजमहल पर आपका भी उतना ही अधिकार है जितना मेरा। आप कभी भी अयोध्या आ सकते हैं, किंतु अभी तो आपको लंका के पुनर्निर्माण के लिए यहां रहना होगा।
ठीक है प्रभु, मैं आपके आदेश का अवश्य पालन करूंगा। किंतु एक और निवेदन करना चाहता हूं आपसे, आशा है आप उसे नहीं टालेंगे।
निसंकोच कहे रक्षेंद्र।
प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जो धन वैभव और आभूषण मिले हैं, मैं चाहता हूं कि आप उसका अवलोकन करें और अपनी इच्छा अनुसार इन वानर सैनिकों में वितरित करें।
विभीषण, ये सच है कि आपका जो कुछ भी है वो मेरा ही है और मेरा सब कुछ आपका, क्योंकि जिसे मैंने अपना मान लिया उससे मैं किसी भी तरह का भेद नहीं कर सकता। इसीलिए आपका ये आग्रह टालूंगा नहीं, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि वस्त्र आभूषण का ये वितरण आप स्वयं करें।
जो आपकी आज्ञा प्रभु।
श्री राम की अनुमति पाकर लंकापति विभीषण अपने महल में गए और रत्न आभूषण और वस्त्र इत्यादि पुष्पक विमान में रखकर प्रभु के सामने ले आए। अब संकट ये था कि विभीषण इतने सारे वानर सैनिकों को ये उपहार कैसे बांटे। तब श्री राम ने कहा कि पुष्पक विमान में भरे इन रत्न आभूषणों को आकाश में ले जाकर उनकी वर्षा करने। तब विभीषण ने ऐसा ही किया और सभी वानर प्रसन्नता पूर्वक श्री राम की जय जयकार करने लगे।
रामा